ಹಯತೆ ಗರಂ ಯತ್ಕೃಪಾತ್ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮದನ ಗೋಪಾಲಂ ಬೃಂದಾರಣ್ಯ ಪುರಂದರಂ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ದೀನಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕುಂದೇಂದುಶಂಖದಶನಂ ಶಿಶುಗೋಪವೇಶಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಗಣವಂದಿತಪಾದಪೀಠಂ ವೃಂದಾವನಾಲಯಮಹಂ ವಸುದೇವಸೂನಂ ನವಜಲಧರವರ್ಣಂ ಚಂದ್ರಕೋದ್ಭಾಸಿಕರಣಂ ವಿಕಸಿತನಲಿನಾಸ್ಯಂ ವಿಸ್ಫುರನ್ಮಂದಹಾಸ್ಯಂ ಕನಕರುಚಿದುಕೂಲಂ ಚಾರುಂಬರ್ಹಾವಚೂಲಂ ಕಮಪಿ ನಿಖಿಲಸಾರಂ ನೌಮ್ಯ ಗೋಪೀಕುಮಾರಂ ವಂಶೀ ವಿಭೂಷಿತಕರಾನ್ನವನೀರದಾಭಾತ್ ಪೀತಾಂಬರಾದುರ್ಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಠಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದುಸುಂದರಮುಖಾದರವಿಂದನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ ಶ್ರೀಹರಿ.
ಬುದ್ಧ ದೇವ ಪಾಸ್ ಗಾಯ ಜಾಗ ಉಠಾಯಾ ಬೋಲೆ ಉಠೋ ಅಬ ಬೇಚಾರಾ ತೋ ಪಡಾ ಮರನಾ ಸರ ಉಠೆ ಕ್ಯಾ ತೋ ಹಾಥ ಕಾ ಸಾರೇ ಸೇ ಉಠಾಯಾ ಸಾರೇ ಸುಲಾ ದಿಯಾ ತಬ ಬುದ್ಧ ಕೇ ಮನ ಮೇ ಆಯಾ ಕಿ ರೇ ರಾಮ 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 ಜಿಸ್ ಶರೀರ ಪರ ಇತನಾ ಅಭಿಮಾನ ವೋ ಅಪನೆ ಆಪ್ ಉಠ ನೀ ಸಕ್ತಾ ವೋ ಅಪನೆ ಆಪ್ ಬೈಠ ನೀ ಸಕ್ತಾ ಸಾರೇ ಸೇ ಉಠತಾ ಬೈಠತಾ ಔರ್ ಯೇ ತೋ ಭೂಲತಾ ಭೀ ನಹೀ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಿ ದಶಾ ತೋ ಕಹಾ ಕಿ ಛಂದಕ ಬತಾವ ಬಿಮಾರ ಹಮ ಭೀ ಹೋಂಗೇ ಕ್ಯಾ ತೋ ಬೋಲೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಭಗವಾನ್ ಕರೆ ಆಪ್ ಬಿಮಾರಿ ನಾ ಆವೆ ಪರ ಬಿಮಾರ ತೋ ಹೋ ಸಕತೆ ಹೈ ಸಭಿ ಬೋಲೆ ಸಭಿ ಅಬ ತೋ ರಹಾ ಸಹಾ ಭೀ ಉನ್ಕಾ ಜೊ ಕುಛ ಭೀ ಪ್ರೇಮ ಥಾ ಶರೀರ ಪರ ವೋ ನಷ್ಟ ಹೋ ಗಯಾ ತೀಸರಿ ಬಾರ ಫಿರ್ ನಿಕಲೆ ಹೋನಹಾರ ಕೆ ಬಾದ ಆಜ ಉನ್ಕೋ ದೂರ ಸೇ ಸುನಾಯ ದಿಯಾ ರಾಮ ರಾಮ ಸತ್ಯ ಹೈ ರಾಮ ನಾಮ ಸತ್ಯ ಹೈ ಬೋಲೆ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಜಾ ರಹಾ ತಮಾಶಾ ಕೋಯಿ ಬೋಲೆ ತಮಾಶಾ ಹೈ ತುಮ ಬೋಲೆ ಯೇ ಏಕ ಚಾರ ಆದಮಿ ಇಸ್ಕೋ ಉಠಾಯೇ ಹುಯೇ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಬಾಂಧ ರಖಾ ಹೈ ಕಿಸ್ ಚೀಜ ಕೋ ಬಾಂಧ ರಖಾ ಹೈ ಕಹಾಂ ಲೇ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಹೈ ತೋ ಬೋಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಯೇ ಮರ ಗಯಾ ಮರ ಗಯಾ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಇಸ್ಕಾ ಸಾತ್ ಚಲೋ ಪೀ ಚಲೋ ಪೀಠ ಮುಕೋ ಗಯಾ ಸ್ಮಶಾನ ಮೇ ಲೇ ಜಾ ಕೇ ಚಿತಾ ಬನಾಯೀ ರಖ ದಿಯಾ ಜಲಾ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನೇ ಕಹಾ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಸಬ್ ಕ್ಯಾ ತಮಾಶಾ ಬನಾ ಬೋಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಮರ ಗಯಾ ಥಾ ಉಸ್ಕೋ ಲೇ ಜಾ ಕರ್ಕೆ ಚಿತಾ ಪರ ಜಲಾ ದಿಯಾ ಗಯಾ ತುಮ ಜಲಾ ದಿಯಾ ಗಯಾ ದರ್ದ ನೀ ಹುವಾ ತೋ ಕಹಾ ಮರನೆ ಕೇ ಬಾದ ದರ್ದ ನೀ ಹೋತಾ ತೋ ಬೋಲೆ ಮರನಾ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಬೋಲೆ ಸಾರಿ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕಿ ಶಕ್ತಿಯಾ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಸಬ್ ನಷ್ಟ ಹೋ ಗಯಿ ಯೇ ಮುರ್ದಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೋ ಗಯಾ ನಿಷ್ಪ್ರಾಣ ಹೋ ಗಯಾ ಜಲಾ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಬೋಲೆ ಹಮಕೋ ಭೀ ಜಲಾ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಅಬ ಛಂದಕ್ ನೇ ಕಹಾ ಕಹಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಬ ಯೇ ಅಬ ಶಕುನ್ ಕೆ ಬಾದ ಮೈ ಕೈಸೆ ಮುಂಹ ಸೇ ಕಹೂಂ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಜೋ ಜನ್ಮತಾ ಹೈ ವೋ ಮರ್ತಾ ಹೈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ ತಬ ಬುದ್ಧ ನೇ ಕಹಾ ಕಿ ಬಸ್ ಹೋ ಗಯಾ ಖತಮ್ ಏಕ ಬಾರ ಫಿರ್ ನಿಕಲೇ ತೋ ಬಾಬಾ ರಾಮ ಸಿಂಗಾ ಜೀ ಶರೀರ ಸೇ ಕೋಯಿ ಗೇರಿಮಾ ವಾಲೆ ಮಿಲೇ ಬೋಲೆ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಚೀಜ್ ಹೈ ಪೀಲಾ ಪೀಲಾ ಪಹಲೆ ಹುವೆ ಕಪಡಾ ಬೋಲೆ ಯೇ ಆದಮಿ ಹೈ ಬೋಲೆ ಯೇ ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಬೋಲೆ ಯೇ ಇಸ್ ದುಃಖ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸೇ ನಿಕಲ್ ಕರ್ ಪರಮ ಸುಖ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಜಾನೆ ಕಾ ಇಸ್ನೇ ವ್ರತ ಲೇ ಲಿಯಾ ತೋ ಬೋಲೆ ಯೇ ಚೀಜ್ ಯೇ ಚೀಜ್ ಬಢಿಯಾ ಅಪನೆ ತೋ ಯೇ ಲೇಂಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕರ್ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಆ ಗಯೆ ರಾಜಾ ಕೋ ಲಗಾ ಪತಾ ರಾಜಾ ನೇ ದೇಖಾ ಅಬ ಉನ್ಹೋನೆ ಘರ್ ಮೇ ಆ ಕರ್ಕೆ ಉಸಿ ದಿನ ಸೇ ತಮಾಮ ನಾಚ ಗಾನ ತಮಾಶಾ ಸಬ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಬಿಲಾಸಿತಾ ಕಿ ಸಾರಿ ಚೀಜೆ ಅಲಗ್ ಕರ್ ದೀ ಮಹೀನೆ ಭರ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಥಾ ರೋಹಿತ್ ಸಬ್ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಉದಾಸೀನತಾ ಛಾ ಗಯಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಆ ಗಯಾ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ವಿರಾಗ ಆ ಗಯಾ ರಾಜಾ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹುವಾ ರಾಜಾ ನೇ ಬುಲಾಯಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೋ ಸಮಝಾಯಾ ಬಹುತ್ ಕಿ ಬೇಟಾ ಅಭಿ ತೇರೆ ಬನ್ ಜಾನೆ ಕಾ अवसर नहीं है, तुम राज्य भोगो, बड़े होगे तब तुम वन में जाना। वो कल मैंने सुनाया था ना, उसने चार बातें रखी सामने, मैं कभी बूढ़ा न हूं, मैं कभी बीमार न पड़ू, मैं कभी मरू नहीं, मेरा राज्य सदा बना रहे, तो राज्य करने को तैयार बन में नहीं जाऊंगा। कौन कहे बुद्ध को वैराग्य हो गया, आधी रात के समय वो देवी सोई हुई, रोहित पास सोया हुआ, देखा उठे उठे, देखा पत्नी की तरफ, फिर मन में कुछ मुंह आया, बच्चे की तरफ देखा, फिर मुंह आया मन में, फिर मानो कोई जैसे पुकार रहा है। बुद्ध ने कहा दुख है छोड़ो, धोखा है, उतर गए नीचे। छिंदक को जगाया, सो रहा था, छिंदक से कहा रथ लाओ, रथ आया, सवार हुए, कहा चलो। 32 कोस दूर जा करके नदी के उस पार बुद्ध ने कटार निकाली, सारे केश काट डाले अपने और तमाम कपड़े उतार दिए, कहा लौट जाओ भैया, अब हम दूसरे मार्ग पर जाते। ये बुद्ध की, बुद्ध वैराग्य की ये गाथा है। तो ये मैं कह रहा था कहां, भगवान के सौंदर्य के बाद जगत का कितना ही सौंदर्य हो, वो सौंदर्य बालकपन से तरुण होने पर बढ़ा और रजस हो गया, और इसके बाद वो घटा, वृद्धावस्था में इतना दिक्कत हो गया कि उसको देखने को आदमी नहीं चाहता, बूढ़े को यूं देखना चाहता। लेकिन जो भगवान का सौंदर्य है वो कैसा है कि उनका शरीर जो है वो दिव्य है, पांच भौतिक नहीं है, सच्चिन्मय है और स्वेच्छाकृत है। इसलिए क्या है कि उसमें भी परिवर्तन तो होता है, वो अपरिवर्तनशील तो नहीं है, पर उसका परिवर्तन नित्य होता है वृद्धि में। आज जैसा सुंदर है कल उससे अधिक सुंदर, इस क्षण जैसा सुंदर है दूसरे क्षण और सुंदर, नित्य नित्य नवनवायमान, नित्य नित्य नवनवायमान, माने क्षण क्षण में पल पल में जिसके सौंदर्य का विकास होता रहता है, ये न मालूम किस काल से होता आ रहा है, और वो विकास होता हुआ सभी को दिखता है। ये बात नहीं है कि सतयुग में जो सौंदर्य था वो उससे कम था, पर यह उससे बहुत बड़ा हुआ है, ये तो वैचित्र है। दो विरोधी अवस्था जिसमें एक साथ रहती है उसी का नाम भगवान है, भगवान उसी का नाम है कि जिनमें दो विरोधी तत्व एक साथ एक समय युगपत रहते हैं। तो भगवान का जो सौंदर्य है ये नित्य नित्य नवायमान है, बढ़ने वाला है। दूसरी बात, एक बात चाहिए, दूसरी बात, जगत की कोई भी वस्तु, जगत का कोई भी पदार्थ जब तक नहीं मिलता तब तक उसके लिए आतुरता रहती है, आकर्षण रहता है, और मिलने के बाद भी कुछ समय तक वो आकर्षण चलता है। पर वो वस्तु अगर समीप रहने लगी, वो वस्तु अगर अपने पास रहने लगी, तो कुछ समय के बाद उसका जो आकर्षण है नष्ट हो जाता है। जगत का कोई भी रूप, जिस रूप के लिए मनुष्य अत्यंत लालायित होता है, अगर वो रूप मिल जाए और पास रहने लगे, नित्य हो जाए, तो कोई उसमें फिर काम नहीं रहती। पर भगवान का रूप इस प्रकार का विलक्षण है कि वो क्षण क्षण में नया नया आकर्षण पैदा करता है, माने उससे कभी रुचि नहीं होती, उसके देखने के लिए नित्य नित्य आंखें तरसा करती हैं, देखते देखते भी प्रतिक्षण दिख रहा है, प्रतिपल दिख रहा है, उसके दिखने में विराम नहीं है, व्यवधान नहीं है, पर दिखते हुए भी ये मन करता है कि अब की देखो, अब की और देखो, अब की और देखो, माने वो कभी पुराना कभी बासी होता ही नहीं। जितने संसार के पदार्थ हैं इन शब्द के रूप एक तो विकृत होते हैं और विकृत नहीं हो, जहां होते वहां बाषित होने लगते हैं। बना है रूप वही अभी बढ़ रहा है, तथापि अगर वो पास रहने लगा तो उसमें से आकर्षण खिंच जाएगा। जो आकर्षण होता है मिलने से पहले और जो आकर्षण होता है मिलने के काल में कुछ समय तक, वो आकर्षण उसके बाद ही रहता है, पर भगवान के रूप में वो रहता है। तो दो बात, एक तो भगवान का रूप नित्य नवायमान है, दूसरा भगवान का जो रूप, भगवान के सौंदर्य का जो महत्व है, जादू है, वो ऐसा है कि प्रतीक्षण खींचने वाला है, उससे कभी अलग नहीं होती। तीसरी बात क्या है भगवान के रूप में कि वो जगत का रूप जो है ना, ये रूपा सत्य लोगों को मोहित करता है। जिन लोगों की रूप में आसक्ति नहीं है उनको जगत का रूप मोहित नहीं करता, पर भगवान का रूप ये बूढ़े बड़ेरे खंखरे हजार हजार दस हजार लाख लाख वर्ष की आयु वाले तपस्वी ऋषि, इनके मन को भी खींच लेता परमहंस मुनि। परमहंस मुनियों के मन को जो खींच ले, ये जादू है उस रूप राशि में, ये विलक्षणता। ये आता है महाराज कि श्री कृष्ण को देख करके औरों के बात छोड़ दीजिए, भीष्म, बालिक, व्यास ऐसे लोग भी बड़े बूढ़े बूढ़े ये देख करके आंखों की फलक मारना भूल जाते थे। प्रकृति अब इनमें रूप का, इनमें सौंदर्य की क्या पिपासा बाकी रही है। वो कहते हैं कि मरे मन जाग उठते थे इनको देख करके, मरे मन में जिनका मन मुर्दा हो गया, किसी और खिंचता ही नहीं उस मरे मन के सामने। तो मुनि मन को हरने वाले ये इसका रूप, ये तीसरी बात। चौथी बात, शत्रुओं के मन को हरने वाले, खरदूषण के सामने जब ये आए राम तो बोले भी ऐसा रूप तो हमने त्रिभुवन में कभी देखा ही नहीं, कितने राजकुमार हमारे सामने आए ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, इनको मारे जाके। शत्रु भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाएं, ये चौथी बात। पांचवी बात भगवान के रूप की, मनुष्येतर प्राणियों के चित्त को खींचने वाले, मनुष्यों का रूप किसी और प्राणी को नहीं खींचता। तो इनके सौंदर्य के सामने गायें, बछड़े, ये वृक्षों पर चहकने वाले पक्षी, वृक्षों पर कूदने फांदने वाले बंदर, गिलहरियां, मेंढक, सांप, ये सब इनके सौंदर्य को कभी आंख से देख लेते तो मोहित हो जाते। ये पांचवा जादू इनके रूप का। छठा जादू जड़ मोहक। ये जो जड़ जो है वृक्ष और जड़ जो है पर्वत पहाड़, जड़ नदियां, ये इनके सामने जब ये रूप आ जाता इनकी आंखें विकसित हो जाती। नदियां जो हैं उछलने लगती। ये आया है ऊपर भगवान का दायरे पर है, जमुना जी बही ऊपर आ गई, चरण धो करके लौट गई, देखती रह गई रूप को, धारा रुक गई, पत्थर से रस चूसने लगा, पेड़ झुक झुक करके चरणों में आने लगे। ये जड़ की दृष्टि। तो ये पांच बात भगवान के सौंदर्य में है। और छठी बात है, वो बड़ी आश्चर्य की बात है, वो अपने रूप पर आप आकर्षित हो जाते हैं। ये छठा जादू, ये भगवान के सौंदर्य का छठा जादू है। दूसरों को तो सब आसक्त करते हैं, और ये अपने रूप पर आप आसक्त हो जाते कि ऐसा रूप तो भाई जगत में कहीं किसी का है नहीं है। तो ये कहते हैं भाई एक बात है, मुंह पर आगे क्षमा कीजिएगा आप लोग। राधा क्या वस्तु है, राधा क्या तत्व है, उस तत्व का एक रूप बताता हूं। अपने रूप को इन्होंने एक दिन देख लिया, अब देखने को देखा दर्पण में, देखा किसी और चीज में, वो दिखता नहीं, तो देख कर ये विमुग्ध हो ओहो, तो सोचा कि ये कैसे दिखता रहे और इस रूप का, इस सौंदर्य का मजा कैसे मिले, ये आनंद कैसे आवे, इस संकल्प ने राधा बना दिया। राधा क्या वस्तु है कि श्री कृष्ण के रूपाकांक्षी श्री कृष्ण का भिन्न विग्रह कुछ। श्री कृष्ण ने चाहा कि मेरे रूप सौंदर्य का सुख मैं ग्रहण करूं, अब अपने आप कैसे मिले, दूसरे को दिखा दे तो अपने को कैसे मिले, उसका आस्वादन स्वयं कैसे कर सके, तो स्वयं ऐसा बनना चाहिए जो रूप को देख करके जिसका हृदय ऐसा हो, जो रूप पर अपने आप को न्यौछावर कर सके। इसलिए नारी रूप की आवश्यकता हुई। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं नारायण, स्वयं कुछ भी उन्हें कहें, स्वयं परमात्मा, कौन से परमात्मा, ये पांचों प्रकार के गुणों से संपन्न रूप वाले भगवान, इनमें जब छठा विकास ये आया अपने रूप पर आप मोहित होने का, तो इस विकास ने राधा को उत्पन्न कर दिया। राधा के रूप में श्री कृष्ण ही स्वयं अपने सौंदर्य का रसास्वादन स्वयं करते रहते हैं, इसलिए राधा श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। तो ये भगवान के सौंदर्य का एक जादू है कि ये जहां जहां कहीं किसी मनुष्य के, पशु पक्षी के, देवता मुनि के, जड़ लोगों के, जलचर और स्थलचरों के, किसी के भी अगर ये दृष्टि पथ में कभी आ गया तो उसके मन को स्नेहरण किए बिना छोड़ा नहीं, और अंत में इतना जादू किया कि अपने मन को भी स्नेहरण कर दिया। ये श्री कृष्ण के, भगवान के सौंदर्य का जादू, ये सौंदर्य का, तो ये कोई सौंदर्य का वर्णन नहीं हुआ है, वो तो वर्णन तो नहीं कर सकते उस चीज का, फूल चीज का जो हमने आंख से देखी है। इस पंखी का कोई कहे कि तुम वर्णन कर दो, फोटो उतारो वाणी से, नहीं कर सकते। वाणी में वो शब्द ही नहीं है जिनसे इस पंखी के एक एक अवयव का पूरा पूरा चित्र खींच सके वाणी। आंख देखती है, अब यहां कुछ मैला है, यहां सफेद है, वाणी कहां खींचेगी, उस मैले में क्या अंतर है, सफेदी में क्या अंतर है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कैसा है, आंख ने देखा, आंख बता सकती है, वाणी बता सकती है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। तो जब स्थूल रूप का वर्णन नहीं कर सकते हम, तो जो सौंदर्य राशि है, जिसके सौंदर्य का कभी कहीं पर किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं, तुलना हो तो बताएं ऐसा है, जगत में भी ऐसा रूप बताइए जो कभी बासी नहीं हो, जिसको देखने के लिए सदा चित्त लालायित रहे, जिसको देखकर विरक्तों का मन भी जाग उठे, जिसको देखकर देवता ऋषि मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ पशु पक्षी मोहित हो जाएं, जिसको देखकर जड़ वृक्ष पहाड़ ये मोहित हो जाएं, और जिसको देखकर स्वयं आप मोहित हो जाए, इस प्रकार का जगत में कौन सा रूप जिससे हम तुलना दें इसकी, तो अतुलनीय अनुपम ये भगवान का दिव्य सौंदर्य है। इस दिव्य सौंदर्य की भावना करके, इस भावना के साथ आसक्ति करके चित्त का अनुराग करके चलने वाला जो पुरुष है वो राजमार्गी है। ये राजमार्ग का एक निर्देशन है। दूसरा राजमार्ग का क्या है? राज कहते हैं चित्त के आसक्त होने को। ये भक्ति का भेद है। भक्ति में अनेकों भेद हैं, पर हमारे वैष्णव ने दो भेद प्रधान माने हैं, एक वैधी और एक रागात्मिका। तो जिसमें विधि है, जिसमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा है, जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, ये सब ज्यादा सही बातें। जिस भक्ति में डर है, जिस भक्ति में सम्मान है, जिस भक्ति में आकांक्षा है, जिस भक्ति में परिस्थिति के परिवर्तन का मनोरथ है, जो भक्ति देकर बदले में कुछ लेना चाहती है, वो वैधी भक्ति है। और जिस भक्ति में केवल देना है और वो देना है केवल परम भगवान के सुख के लिए, क्यों देना है कि चित्त फंस गया है, इसका नाम है रागात्मिका भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति किनकी थी? दशरथ कौशल्या, नंद यशोदा, ब्रज के और कौशल पुर के बालक, वहां की देवियां, इनके संबंध भिन्न भिन्न हैं। किसी का वात्सल्य है, किसी का सख्य है, किसी का कर ये मधुर है, भावांतर है, पर ये सभी हैं रागात्मिका भक्ति वाले। इन रागात्मिका भक्ति वाले भक्तों की नकल करके, इनका अनुकरण करके संबंध जोड़कर जो भक्ति की जाती है, उसका नाम है रागानुगा। तो रागानुगा भक्ति जो है, ये राजमार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति क्या करती है? किसी चाह से भक्ति नहीं होती, किसी आकांक्षा से नहीं, किसी भय से नहीं, नरक के भय से त्राण की इच्छा नहीं। एक मुसलमान भक्त हुई है अरब में, रबिया, देवी थी रबिया, बड़ी भक्त। रबिया ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान, यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूं तो मुझे नरक में आज भेज दिया जाए, और यदि मैं स्वर्ग की आकांक्षा से आपको भजती हूं तो स्वर्ग का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और यदि मैं आपके लिए आपको भजती हूं तो आप मुझे मिल जाएं। लेकिन ये रागानुगा वाले और आगे बढ़ते हैं, ये आप मुझे मिल जा नहीं कहते, ये कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आप सुखी हों, वो मुझसे बनता रहे। इनकी आकांक्षा एक रहती है रागानुगा भक्ति वालों की, कि आपके अनुकूल मेरा मन बना रहे, आपके अनुकूल मेरी क्रिया बनी रहे, आप जो चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे, जो आप चाहते हैं वो मुझसे बनता रहे। इस प्रकार की इनकी स्वाभाविक आकांक्षा रहती है, बिना किसी प्रकार की और भावना की। तो इनकी भक्ति जो होती है किसी कारण से नहीं होती, इसीलिए अहेतुक है। इनकी भक्ति में अहेतुकता इसीलिए है, इसमें कोई कारण नहीं है, इसमें कारण है मन नहीं मानता। बोले भाई भक्ति क्यों करते हो? कि भक्ति के बिना रहा नहीं जाता। भजन क्यों करते हो? कि भजन में रहा नहीं जाता। तो साधन सिद्धि राम पद ले हूं, साधन भी राम पद ले हूं और सिद्धि भी राम पद ले हूं। भगवान के चरणारविंद का स्नेह प्रेम बस यही साधन है। क्यों करते हो इसके लिए, और क्या करते हो इसी को, और क्यों करते हो, रहा नहीं जाता और कोई मतलब नहीं। जिसके लिए करते हो वही करते हो और रहा नहीं जाता इसलिए करते हो। इस प्रकार की जो भक्ति है उसका नाम है राग मार्ग की भक्ति, रागात्मिका भक्ति। तो ये दो मार्ग हैं। रागात्मिका भक्ति में तो यहां भी डर है, यहां डर एक बड़ा भाई डर यह है कि कहीं जगत के सौंदर्य में मन रम गया। भगवान के सौंदर्य का नाम लेते हैं और भावना करते हैं, और भगवान के सौंदर्य के स्थान पर अगर कहीं जगत का सौंदर्य आ गया और उसको हम अगर हमने थोड़े काल के लिए भी बैठा लिया भगवान के आसन पर तो गिरने का बाधा है। वैराग्य के मार्ग में ये बात कम है। वैराग्य में अभयम ये जो कहा है ना कि वैराग्य का अभय मार्ग है, इसलिए अभय मार्ग है कि वहां पर ये चित्त के विकार के लिए कोई आधार नहीं मिलता। मतलब त्याग है ना, ये भी छोड़ो ये भी छोड़ो, वहां तो अगर कुछ होता है थोड़ा बहुत तो वैराग्य का अभिमान होता है। वैराग्याभिमान वो रोक देता है वैराग्य को। मैं वैराग्यवान, मुझमें किसी वस्तु का राग नहीं, मेरा मन विषय संकल्प से रहित हो गया, मेरे सामने काम का क्रोध का लोभ का बस नहीं चल सकता, इस प्रकार का अभिमान तो वैराग्य में, जैसा महाराज जी ने कहा जब तक पचता नहीं वैराग्य तब तक झकारें आती हैं, जैसे इसी प्रकार से वैराग्य में ये चीज तो है, वैराग्याभिमान तो होता है लेकिन उसमें और भय कम है। इसीलिए इस मार्ग के जो आकांक्षी लोग हैं राग मार्ग के, उनका उनको बड़ा सावधान किया गया। राग मार्ग वाले जो हैं वो कहीं राग राग करते हुए इसी राग में फंसे रह गए, वहां भी डर है। नाम अगर वहां हो गया, हमारे यहां हम आक्षेप नहीं करते, एक संप्रदाय का नाम ही बैरागी है। हमारे पास पत्र आते हैं बहुत से, बोले हम बैराग लेंगे। अरे बैराग बाजार मिलता से नहीं लोगे, बैराग लोगे क्या? बैराग तो मन की वस्तु है। चित्त में जब विषयों से अत्यंत वितृष्णा हो गई, या तो विषय रहे नहीं और या महान दुख रूप हो गए, अपने आप मन हटेगा, उसका नाम वैराग्य। वैराग्य कोई धार थोड़ी होता है, वैराग्य तो एक स्थिति है, मन की जो राग है स्थिति है, उसका नाम वैराग्य है। तो वहां भी ये डर तो है, परंतु राग के मार्ग में ये डर, इसलिए राग के मार्ग वालों ने ये बताया है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, उनका राग का मार्ग। तो उन्होंने कहा कि राग के मार्ग में विराग की पूरी सहायता है। तो उनके यहां बड़े कड़े नियम थे महाराज। ये रूप सनातन वीर गोस्वामी, ये जीवन इतने बड़े प्रकांड विद्वान, ये छत वाली तो छतवाली स्थान में रहे नहीं, नियम कर लिया था जिस पर छत होगी वहां में रहेंगे। और उसके बाद और नियम उन्होंने कड़ा बनाया, पेड़ भी के रहेंगे पर पेड़ के भी एक के नहीं, आज एक कल दूसरा। यहां तक हुआ जब सनातन पूरे हो गए, चल फिर नहीं सकते, पर नियम का पालन करने के लिए उनके साथी लोग जब शाम होती तो उन्हें उठा के दूसरे पर नहीं सकते, इतना कड़ा नियम। और अपने पास सामान क्या रखा, एक कॉपी और एक मिट्टी का करवा, बस इतनी सामग्री पास। जो पहले करोड़पति थे, बहुत बड़े मनुष्य थे धन में, और यहां तक मीराबाई गई जी वो स्वामी के यहां, वो दूर बैठे थे, जाकर के कहा कि मीरा दर्शनार्थ आई है, तो अपनी भाषा में ये बोल गए जीव गोस्वामी, ये प्रकृति का हम दर्शन नहीं करते, उन्होंने स्त्री का नाम तक छोड़ा था, प्रकृति स्त्री नाम नहीं लेते। यहां तक मानते अपने को सावधानी रहनी चाहिए, प्रकृति कहा। और तब मीरा ने जरा दूसरी बात कहला दी, तो मेरा स्त्री थी नहीं ना, मेरा स्त्री नहीं थी। मीरा ने ये कहलाया कि महाराज हमने तो सुन रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही है, आप दूसरे पुरुष कहां से आ गए जो प्रकृति से ही मिलते, कहा उस देवी को आने दो। दोनों के भाव है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि राग के इस मार्ग में पहले विराग की सहायता अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो राग का मार्ग ये महाराज बड़ा विकट मार्ग है। इसमें गिरने को इतना अवकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? ये जो सौंदर्य है ना, ये वाक सौंदर्य, दृष्टि सौंदर्य, अनेक प्रकार के जो सौंदर्य हैं जो यहां पर हमारी कल्पना में आ रहे हैं, इनमें अगर कहीं मन फंस गया और भगवान के उस अप्रतिम सौंदर्य की तरफ हट गया तो यहां विनाश है। इसीलिए जो रासलीला है ना, ये सत्य काम की चीज नहीं है, इसीलिए गुप्त है। इसीलिए शंकर, नारद, अर्जुन, इनका भी इसमें प्रवेशाधिकार नहीं। इसीलिए ब्रज के जो ग्वाल थे उनको भी इस रासलीला का पता नहीं। स्वान स्वान दारा देव कसान, क्या एक श्लोक है स्वपार्शान, क्या है राजपंचाध्यायी में है कि गोपो ने अपने अपने धर्म पत्नियों को अपने घर में सोए हुए देखा। लोग कहते हैं शिशुपाल को नहीं पता लगा, लगता कैसे? पता तो नहीं है इसका उन ब्रज के गोपालों को, इतनी अंतरंग लीला है, इसका पता शिशुपाल जाए नहीं लगता। लेकिन ये इसलिए अंतरंग है, इसका जो दिव्याज दिव्य रूप है उसको अगर कोई, जिसके मन में संसार के गंदे काम बसते हैं, वो यदि इसमें प्रवेश कर जाए कहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि इसकी भाषा दूसरी है, भाषा दूसरी है इसकी। तो इसकी भाषा को अगर ये लौकिक भाषा में ले लेगा तो मर जाएगा। तो परीक्षित ने लिया तो भगवान ने उसके सुखदेव जी महाराज ने कहा बस ठीक हो गया महाराज, खत्म मामला, इसके आगे और नहीं। तो ये राग का जो मार्ग है इसमें बहुत सुख है, बड़े आराम का है, पर गिरने का भय। इसलिए क्या कहे राग के मार्ग वाले, अधिक सावधान रह करके बैराग्य को साथ रखें। बैराग्य रहेगा अनुचर होगा, बैराग्य रहेगा अनुचर होगा उसका, पर अनुचर ऐसा हो कि जो हमें श्लोक पद ना दिखे, एक श्लोक पर बोल दे श्रृंगार राजपंचाध्यायी का तो ये मूर्छित हो जाए। लेकिन इनके जीवन को देखिए, विष्णु प्रिया जी रोती रह गई, विकट वैराग्य। जीवन भर इन्होंने 18 साल तो इनके महाराज दिव्य भाव में गंभीरा लीला में पुरी में रोते बीते। 18 साल तक ये लगातार विरह और मिलन की दशा में रहे। अब मिल गए, मिल गए श्याम सुंदर, प्रसन्न हो गए, तो ये के बाद ही हट गए। धारा भई यहां तो धारा भई ऐसा वर्णन आता है, वो एक प्राचीन चित्र मिला है कि आंखों से धारा नहीं बची थी, आंखों से आंसुओं के फवारे छूटते थे। यूं एक छोटा कुंड था और भर जाता था, और जब ये उस विरह में रोते संतप्त होते तो इनके दुख को भी देख नहीं सकता, कितना भयानक दुख ही इनको देखते। कुछ देर में जब देखते कि आ गए श्याम सुंदर, जैसे कोई मिल रहे हो यूं, ये मिलते। 18 साल तक इनकी दशा रही, 18 वर्ष तक इस लीला में रहे, जगत संपर्क शून्य, किसी वस्तु से कोई लेन देन नहीं, कौन सजाता, कौन कहता किस चीज, और इतने परम सुंदर थे ये पहले को ठिकाना नहीं। बाबा देश समुद्र के तट पर गए, जा रहे थे, देखा सूर्य की नीलिमा को याद आ गए नील सुंदर और याद आ गए नील सुंदर को नहलाने वाली यमुना कूद पड़े, यमुना ने कूद गए समुद्र में, कूदे यमुना के भरोसे कूद गए, हाहाकार मच गया, पता नहीं कहां गए। दो दिन के बाद मछुओं के जाल में निकले, बाहर लाए मछली, देखा भाई बड़ी मछली मिली है, देखे तो महाप्रभु कीर्तन आरंभ हुआ। यही उनकी दवा थी, जब मूर्छा होती तो भंग होती कीर्तन से, तो वहां कीर्तन किया गया, नाम गया कान में, धीरे धीरे शरीर में चेतना आई, उठ बजे, पर जादू हो गया। जिन मछुओं ने निकाला उनको पकड़ करके, वे मछुए नाच उठे, उन मछुओं के अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया इनके स्पर्श मात्र, इतना इनका प्रेम से भरा हुआ कलेवर था जिसके स्पर्श करने से मछुओं में प्रेम उत्पन्न हो गया। वे भावावेश में आकर के भगवान का कीर्तन कर रहे, उसके नाचने, इतना भी इनका प्रेम, इतना प्रेमी हृदय, इतना इनका अनुराग, परंतु इनका त्याग और वैराग्य इतना विकट, जिसको वो माधवी को मिलाने वाले बिचारे हरिदास को निकाल ही लिया, इतना विकट वैराग्य, इतना विकट त्याग कि कहीं पर किसी प्रकार से भी रियायत नहीं। हरिदास की लोगों ने सिफारिश की तो बोले, हरिदास मेरा प्राण है, इसीलिए तो मैंने सुगंध दिया है, जय को दूसरे दिया जाता है, उसके बिना मेरे प्राण रोते हैं, परंतु मैं अगर अपने को दंड न दूं तो लोग क्या समझेंगे। इसलिए उन्होंने ये विकट भयानक रूप से हरिदास महाराज को निकाल दिया, बेचारे जाकर त्रिवेणी में डूब गए। दो वर्ष के बाद आए, उनको बुलाया नहीं, तो राग के मार्ग में सब ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग मेरे पास बहुत आए, राज की बात कहो, राज की बात कहो, राग की बात कहो। मैंने कहा भी राग की बात तो कहें, पर हमारे हृदय में पहले विराग नहीं तो राग आवे कैसे, और सुनने वालों के हृदय में भी विराग नहीं तो ये राग रहेगा कैसे। इस राग के रखने के लिए विराग चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उस राग के साथ ये राग कहीं मिल गया, उसको मिला दिया तो ये तो आवेगा नहीं, और उसी राग को ये राग मान लेंगे और मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी आवश्यक बात है, पहले इस रस की, इस प्रेम की, इसकी जो चर्चा करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले बड़ा सावधान हो जाना चाहिए वैराग्य के मार्ग को अपनाने के लिए, वैराग्य के मार्ग के रूप में नहीं। अब उसी तो सावधानी की बात, अब बात यह है कि इसमें एक दूसरा भाव है, तो बड़ा सुंदर भाव है। वो भाव यह है कि इन राग के मार्ग में सबसे अधिक सुरक्षित मार्ग जो है, यद्यपि वो है कुछ निम्न श्रेणी का, सुरक्षित मार्ग है वो है दास मार्ग, दास रथ। ये सबसे अधिक सुरक्षित जो हनुमान जी महाराज की थी, मैं दास, मैं सेवक और भगवान मेरे स्वामी। और इससे आगे बढ़े तो एक बड़ी सुंदर पद्धति है वात्सल्य, ये दो सख्य भी जोखिम का है और मधुर तो अत्यंत जोखिम का है। मधुर के अधिकारी तो श्री ब्रजगोपियां ही हैं और उनका होना बड़ा मुश्किल। तो ये जो दो मार्ग हैं इनमें आपत्ति नहीं, ये राग का मार्ग है, सेवा का जो मार्ग है राग का मार्ग है, ये विराग का मार्ग नहीं है। यहां तो दिन भर सेवा करनी पड़ती है, दिन भर। एक बार की बात है, ये आपकी तो सुनी हुई बात है, नई बात नहीं है। ये सेवा में सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है श्री हनुमान जी का। तो एक बार क्या हुआ, ये भाइयों ने, सब भाइयों ने, सुग्रीव इत्यादि नंगद ने मिल करके सोचा, विनोद खाए कि ये हनुमान हर जगह साथ रहता है, ये कभी छोड़ता नहीं राघवेंद्र को, तो कोई व्यवस्था ऐसी करें कुछ दिन को छुट्टी मिल जाए। तो भगवान से काश नहीं की तो भगवान ने कहा भी क्या करें, उसके बिना हमारा काम चलते नहीं। तो वो अच्छी बात, हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि आपके सारे कामों को हम लोग संभाल लें। बहुत दिन हो गए उनको यहाँ रहते, कुछ दिन वो आराम करें, उनकी छुट्टी डूबी जाए, घर चले जाए। तो बोले अच्छी बात है, तुम व्यवस्था कर लो। उन्होंने जितनी सेवा के काम थे सबकी एक लंबी सूची बनाई और सबके सामने टाइम रखा, तभी तभी तक टाइम लगा दिया और सबके आगे नाम रख दिए। बोले तो देखना लेना कोई बचे नहीं, सबने सोच विचार करके 2400 घंटे के पूरे पूरे काम रख दिए, छोटे मोटे सारे काम, और सबका समय रख दिया, समय नहीं बचा एक मिनट, सब कामों के अलग अलग समय, और सबके सामने नाम रख दिया, हनुमान का नाम भी रखा। बोले महाराज जी हमने देखिए पूरी व्यवस्था कर दी, हनुमान जी को छुट्टी मिल जानी चाहिए, बहुत उन्होंने काम किया, कुछ दिन आराम कर लें, और सारा काम हमने सोच लिया है, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, ये सब सर लाओ देखेंगे खुशी देखिए सब में सब ठीक नाम करने थी। अरे बोले हनुमान जी आना यहाँ पर सरकार, ये तुम भी जरा ऊपर तो लो, कोई चीज छूट तो नहीं गई है। हनुमान ने देखा बोले सरकार सब तो ठीक है, एक चीज छूटी है और वो इस दास के जिम्मे रहे। हाँ बोले ठीक है, ये छूटी तो तुम्हारे जिम्मे। बोले महाराज आप जो हैं सरकार तो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, राजा अधिराज हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, तो सब काम में सेवक रहते हैं, तो आपको जिस समय उबासी आवे जम्हाई आवे कोई सेवक सामने रहे वो चुटकी बजा दिया करे। बोले भाई ये बात तो ठीक है, देखो हनुमान का नाम इसका में। अब कोई क्या बोलते छुट्टी दिया था हम तो याद की सिवाया है, तो चुटकी बजाने का काम हनुमान के जिम्मे। तो लोगों ने पूछा महाराज समय कौन सा रखें, हनुमान जी महाराज आपके लिए कौन सा समय रखें। तो हनुमान जी बोले तो सरकार से पूछिए कब उबासी लेंगे। अरे हमें क्या पता कब का रखो, उबासी निकालेंगे हम तो। सरकार से पूछो कि कब उबासी लेंगे, तब जब हाई इनको आएगी। तो बोले महाराज फिर कौन समय रखें, बोले ये भी कुछ समय होता है तो रात में आ जा, दिन में आ जा, सोते समय में आ जा, खाते समय आ जा, उठते समय आ जा, बाजते समय कर। सब बोले ये लिखो जब जब उबासी आ गए तब, तो समय लिख दिया जब जब भाई आ गए तब। बोले सब जब आ गए तब, तो बोले फिर इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज हम हमारी ये ड्यूटी रही जब दिन रात आपके मुंह की तरफ काटते रहे, आठों पर सोते हो तब भी आपके सामने रहे, और आप चलते हो तो आपके सामने सामने चले, आप दरबार में बैठे हो तो हमारी कुर्सी सामने रहे, आप भोजन करते हो तो हम सामने बैठे रहे, एक क्षण भर के लिए भी विराम नहीं। तो अब समझा उन शासन ने कि ये देखो हम तो है तो कहीं छुट्टी दिलाने, और ये तो आठों पर भी हो गए, हमारी तो सब ड्यूटी जो है वो तो दूसरे नंबर में रहेगी, कभी कभी कोई आवे, कोई 5 मिनट के लिए आवे, कोई 7 मिनट के लिए आवे, 10 मिनट के लिए आवे, अलग अलग काम करिए अपना चला जाए। तो ये क्या चीज है, ये मजाक की बात नहीं है। जो सेवक होता है ना, जिसमें सेवा की सच्ची भावना होती है, ये दासरथी जो है उसमें एक ही बात होती है कि मुझको अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर अहर्निश मिलता रहे, जीवन भर मिलता रहे, अनंत जीवन मिलता रहे, उसमें दूसरी कोई आकांक्षा नहीं होती। तो ये जो सेवक होता है, ये सेवक क्या होता है, सेवक कौन है जो निरंतर राजपूर्वक मालिक के अनुकूल कार्य करता है। राजपूर्वक इसलिए जिस सेवक में राग नहीं होगा, जो नियम का काम करेगा वो नियम का काम तो कर देगा, पर मालिक का कोई ऐसा काम जो नियम में नहीं है तो क्यों करेगा। पर अगर मन में राग है ये मेरा स्वामी, स्वामी में अगर चित्त का राग है, स्वामी में चित्त की आसक्ति है, अगर चित्त फंसा हुआ है तो वो समय नहीं देखेगा, हर समय हर एक काम में वो अपनी आवश्यकता मानेगा कि मैंने रहा तो अभिमान है उसके, राग ही अभिमान पैदा करता है कि मैंने रहा तो कौन करेगा इस काम को, ये इतना कौन करेगा, ये मैं करूंगा। वो अपने स्वामी पर अपना हक मानता है। ये सच्चा सेवक होता है वो कहता नहीं तो स्वामी का अपने हकदार मानता है। लक्ष्मण जी ऐसे हकदार मानते थे, लक्ष्मण जी महाराज जो है ना हकदार मानते हमेशा हमारा हक। तो इसी प्रकार से जो सेवा का मार्ग है जो दक्ष रहती है, ये राग मार्ग में ये बिना जोखिम की चीज तो यह है। क्या बजे है ये राग मार्ग में जो दास रहती है ये बिना जोखिम की चीज है, इसमें कहीं कोई जोखिम है नहीं। तो राग मार्ग में ये राग मार्ग जो दास रहती है इसमें एक बात जरूर है, इसमें मालिक की सेवा करने वाले सेवकत्व का तो अभिमान है, पर ये नहीं है कि मेरी शक्ति से मैं सेवा करता हूं। वो ये नहीं समझता कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामग्री है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास बल है, मेरी बुद्धि से मेरे बलबूते पर मेरी सामग्री से मैं सेवा करता हूं, ये अभिमान नहीं है। सेवकत्व का अभिमान है लेकिन ताकत उनकी, बल उनका, बुद्धि उनकी, प्रेरणा उनकी, सामग्री उनकी और कराने वाले भी वो। जब हनुमान जी से कहा ये राम जी, राम जो है ना ये बड़े ये भगवान रिंग होते फिरते हैं, जल्दी जल्दी रिंग हो जाते हैं, तो भगवान ने कहा हनुमान से कि हनुमान देखो भाई तुमने जो काम किया आहा इतना तुमने अद्भुत काम किया कि उसका बदला चुकाने का हमारे पास कुछ नहीं। सुन कपि कोई उरिन मैं नाही कर विचार देखा मन माही प्रत्युपकार करूं का तोरा सन्मुख हुए न सकत मन मोरा। बहुत आगे बढ़ गए, कर्जदार अपने महाजन के सामने मुंह नहीं करता, सिर नहीं करता। इन्होंने कहा सिर की कौन सी बात है, सिर तो नीचा है ही, तुम्हारे सामने मन करने में भी सब कुछ होती है, तुम इतने हमारे महाजन बड़े हो, हम तुम्हारे इतने कर्जदार हैं। बिल 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 कर्जदार हैं तो कर्ज चुका दो ना सर। तो कहा चुका दें कैसे, कर विचार देखा मन माही, हमने सोचा अपने मन में क्या देख चुका हूं, तो तुम्हारे उपकार के बदले में हमारे पास कोई चीज हमको दिखी नहीं जिसको देख करके तुम्हारा ऋण चुका दें। भैया हम तो हमेशा कर्जदार रहेंगे। पर हनुमान ने क्या कहा, हनुमान ने कहा महाराज बस भुलाते हैं आप हमको, अरे बंदर शाखा से शाखा पर जाए, एक डाली दूसरी डाली पर कुदरे वाला बंदर, उसमें कोई बल है, ये तो आपके बल से हमने लंका को जला दिया, आपके बल से हमने समुद्र को पार कर लिया, आपके बलबूते पर हमने अक्षय कुमार को मार दिया, आपके बलबूते पर रावण की सभा में हमने विजय प्राप्त कर ली, और आपकी आपके बलबूते पर खबर लेकर हम लौट गया, नहीं तो समुद्र नागना मुश्किल। तो हनुमान भी सच्ची कैसे, राम का सुधार है ऋणी होना। और हनुमान अपनी स्थिति बताते हैं, अगर कभी कभी सेवक के अंदर अपने बल का अभिमान आ गया कि मैंने अपने बल से अपने बलबूते पर अपनी शक्ति पर अपनी बुद्धि पर हमने मालिक की सेवा की, तो भगवान को जरा वहां पर हंस देते हैं, पर कभी उसको उसको दिखा देते हैं उसके बलबूते की चीज। एक बार की बात है, द्वारका की बात, द्वारके की बात, तो वहां बात चली, सत्यभामा जी बैठी थी, सत्यभामा जी ने बात की बात में कहा कि हाँ देखा है जगत का सौंदर्य तो देखा है, पर ये सरकार
हम जैसी सुंदरी कोई आपको मिली नहीं है। मेरे भाई ऐसी बात, तुम बड़ी सुंदर हो। हो गई बात। एक दिन बात चल रही थी, भाई कौन जल्दी जा सकता है, किसकी चाल तेज है। तो बात है कि भाई वो तेज है, वो तेज है। तो गरुड़ जी ने कहा वहां बैठे बैठे थे पास मन में, ये सब सरकार क्या बात कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, हमारे समान किसी की चाल संसार में है क्या। तो बोले सरकार आप चाल वाल की बात सोचिए, दास बैठा है, दास से बढ़कर किसकी चाल है। तो दास आकर सेवक है। वो ठीक है जी, आपने तो बड़ा बल है महाराज, बड़ा बल है। फिर से एक दिन बात, तो बोले भी संसार को सबसे शीघ्र अपने वश में कौन कर सकता है। तो हाथ में था चक्र रखे थे चक्र भगवान, वो बोले कि महाराज ये हम हमारे बैठे तो कहेंगे सारे जगत को वश में कर रहे हैं हम अभी से, कौन बात है। भगवान ने कहा हाँ तुम तो ऐसे ही हो भैया। एक दिन बात चली चली सबके मन में बात पैदा कर दी, तो भैया बोले बोले हनुमान को बुलाना है एक काम। तो बोले हनुमान आ गए, तो हनुमान तो बिना राम के बातचीत करेगा नहीं, हनुमान के राम चाहिए। तो श्री कृष्ण बोले कि राम तो हम बन जाएंगे, राम तो हम बन जाएंगे, तो सीता कौन बने। तो सत्यभामा जी आप बनो सीता। सत्यभामा जी ने कहा हाँ सीता बन जाएंगे, कौन सी बात। तो बोले अच्छी बात है, हम तो राम सीता बन जाते। इससे कहा भगवान से कहा आप एक काम करो, आप दरवाजे में बैठे रहो, समझे किसी को आने मत देना। बोले ठीक नहीं आने दे। जोगी से कहा कि योगी आप जाइए गंधमाजन पर, और हनुमान से कहिए कि भगवान राघवेंद्र ने आपको बुलाया, राघवेंद्र कहिएगा नहीं तो आवेगा नहीं, उसको किसी की क्या परवाह है, आवेगा नहीं वो, तो अच्छी बात है। तो ये साहब गए, गरुड़ जी गए गंधमाजन पर, गए तो ये भगवान राम की अर्चना कर रहे, सुनिए सुनाया तो बड़ी अच्छी बात है, गरुड़ जी महाराज आप चलिए और मैं आया। गरुड़ जी ने कहा कि क्या चली चलिए कहते हैं, मैं ले चलूँ आपको, जल्दी बुलाया ले साथ चलिए, बदबद दिया था। बोले आप चलिए तो महाराज आया मैं। बोले दिन लग जाएंगे आपके कई, क्या आया आपके पांच थोड़ी है, हमारे तो पांच है न सही पांच, सरकार माफ कर देंगे आप करें। गरुड़ जी पूरे देश से लोग ये हनुमान बहुत बोलता है, पहुंचेगा कई दिन के बाद, कह देंगे सरकार से जो आया नहीं। गरुड़ जी तो चलते ही रहे और हनुमान जी पहले पहुंच गए। जब हनुमान जी पहुंचे वहां पर दरवाजे पर ये चक्र महाराज बड़े सुदर्शन जी दाएं गंदे बैठे हो जाए, सरकार ने रोका है। तो वो बोले कि राघवेंद्र के दरबार में हनुमान के विरोध हुई नहीं आज तक, तो तुम नहीं बात कर तुम कौन आगे बैठे यहां पर, राघवेंद्र के दरबार में हनुमान हमेशा खुला दरवाजा, रात में जाए दिन में जाए जहां जाए अंतपुर में जाए, कौन तुम बोले हम चक्र हैं। नहीं माना नहीं माना, उठा के चक्र को दबा दिया, चलो अंदर गए, राम को देखा प्रणाम किया, सीता को देखते रह गए। भगवान बोले कि प्रणाम करो ना। बोले महाराज जी तो कुछ चुड़ैल बैठ लिए, ये कैसे आ गए आपके बगल में। सत्यभामा जी तो वही झंडी हो गए, ज्यादा सौंदर्य था ना सत्यभामा जी का, उसको तो बताया चुड़ैल ये कहां से आगे बैठ गई है। तो सत्यभामा जी का गर्व ही होगा ना। इतने में गरुड़ जी आए पीछे से, योगी अंदर आ गए, अंदर आ करके योगी ने देखा कि यहां तो हनुमान जी कहीं बैठे हैं, तो गरुड़ जी का गर्व भी शांत हो गया। अब भगवान बोले कि वो चक्र महाराज जो बैठे थे दरवाजे पर भी, वो कहां का हनुमान, तुम कैसे आ सकते, तुमको उसने रोका नहीं। अरे बोले महाराज ये देखो चक्र महाराज देखो, मुंह बाग निकाल दिया, बोलिए पड़े हंगर बड़ी कैसे हुआ? बोले बहुत चीजें पर करने लगा मेरे सामने। तो मैंने कहा कि राम के दरबार में हनुमान करो। हाँ बोले तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा। बोले के देखो आगे निकाल के भेज दिया वो चक्र जी महाराज से निर्दय करके बैठ गए। तो इस प्रकार से ये जब भी अपने बल का अभिमान होता है दास में, इन्हें कह रहा था ये कि सेवक में सेवकत्व का अभिमान तो है, पर मेरी बुद्धि से, मेरे बल से, मेरी शक्ति से, और मेरी सामग्री से मैं सेवा करता हूं भगवान की, अभिमान नहीं होता। ये होता है कहीं पर तो ये गति होती है। इस प्रकार से दिखा देते हैं कि तुम मेरे बल पर काम कर रहे थे। एक बार बल आ गया इन पर। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या बात सुनते हैं आपकी, ये लंका जाने के लिए आपने समुद्र पर पत्थरों की पुल बांधी। उस समय वाण विद्या का विकास नहीं हुआ था मालूम होता। भगवान ने कहा अरे बड़े जबरदस्त राक्षस थे, बाण टूट जाते तब। अरे बोले क्या टूट जाते, हम बांधते। बांधो भाई। इन्होंने बाणों का पुल बांधा और हनुमान जी से कहा देख लो और बंधन नहीं। हनुमान जी निकलने लगे तो चूर चूर हो गया। भगवान ने देखा अर्जुन की तो बात जाएगी, तो भगवान नीचे उसके आ गए तो लहू निकल गया, तो जल लाल हो गया। तो अर्जुन ने देखा कि ना ये लाल कैसे हो गया। अरे बोले देखो तो सही हमारी पीठ नीचे हो गया, हमारा जाल दिखा कैसे हो गया। अरे पुल तो टूट टूटा गई तुम्हारी हनुमान के से जाने से। हमने देखा कि अर्जुन की बदनामी हो जाएगी हनुमान के पड़ेगा, तो हमने पीठ दे दी अपनी, तो छिल गई हमारी पीठ। अब बताओ तुम, ये एक बंदर था और वहां से 56 कोटि तो यूथक बंदर थे। हनुमान से दिखे कितने बंदर थे। अर्जुन जी का अभ्यास शांत हुआ। बोले ठीक है महाराज, तो जहां भी ये सेवक जो है ये अपने बल की बात कहते हैं वहां तो बस भगवान देखे अभी जरा सा ठीक मार्ग पर मिला, और नहीं तो सेवक का जो धर्म है वो यही है कि स्वामी की निर्बाध सेवा करना, निरंतर सेवा करना, आठों पहर सेवा करना, और सेवा में अपना बल मानना नहीं, अपनी बुद्धि मानना नहीं, अपनी सामग्री मानना नहीं, स्वामी की वस्तु, स्वामी की प्रेरणा, स्वामी का बल, स्वामी की बुद्धि, मैं तुच्छ सेवक और मुझे सेवा का हक दे दिया भगवान ने, ये कभी नहीं छोड़ूंगा। सेवा को नहीं छोड़ता, ये है सेवक का धर्म। तो दास रख, इसमें राग ना हो तो वो सेवा अष्टपहरी नहीं होती। अष्टपहरी सेवा होती है ये वैष्णवों के यहाँ, अष्टपहरी सेवा अष्टयाम है। तो अष्टयाम में जो करते हैं ना ये बड़ा सुंदर करते हैं, पर याम याम के अलग अलग करते हैं, और उनका मतलब ये है कि आठों याम ही चलती रहे, विराम बीच में हो ही नहीं। अरे जिस समय सोए उसमें पंखे चलते रहे। सेवा में कभी विराम यदि हो गया तो सेवा भग्न हो गई। तो ये भक्त लोग जो हैं इनके लिए भगवान हमेशा काम रखते हैं, जिसमें आठों पर इनको सेवा करने का अवसर मिलता रहे और ये उसी में इनको सुख मिलता है। कहीं सेवा से वंचित हुए क्षण भर के लिए तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये जो दासरथी है, ये दासरथी बड़ी बेजोखिम की चीज, इसमें मालिक का सहारा, मालिक का बल, उनके बल बूते पर सब करें। बोले किस बल करते हो? बोले राम के बल पर। बस शांत हो गए। आप सुना रहे थे ना, मैंने सुना नीचे से। लक्ष्मण जी महाराज बड़े बढ़ बढ़ कर बोले, बढ़ बढ़ के बहुत बोल गए। बात ठीक थी, उनका बड़ा प्रेम था, रामानुराग था। कहा नहीं गया जनक का वचन, वीर विहीन मन मही में जाने। तो ये जनक की वाणी उन्हें बड़ी असह्य हो गई। बोले राम को मुंह करके, पर बोले क्या? कुंड को ब्रह्मांड उठाऊं, प्रमाण ले खाऊं, ऐसा वो सको मेरे मूल की बतोरी, कहां तो कहते जाड़ो फोड़ी, कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई असर नहीं पड़ा। ये बोलते गए, जिन्होंने देखा कि कुछ बोलने में भूल हो रही है,
याद आई बात, तब बोले अरे इनके सामने अपनी डींग हाँक गया। तब बोले तोरों छत्र दंड जिन तब प्रताप बलनाथ। बस तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुण्य न धनो धनुभास। लखन सकोप बचन जग बोले जग मगान मही दिग्गज डोले। डोल गए दिग्गज, मही डगमगा गई। क्यों डगमगा गई? तो प्रताप बलनाथ राम का बल राम का प्रताप आ गया लक्ष्मण की वाणी में। तब लोगों ने देखा अब खैर नहीं। तो ये इसीलिए जो सेवक हैं वो सेवक केवल अपने स्वामी का बल मानते हैं, उनकी बुद्धि मानते हैं, उनकी सामग्री मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं। अपनी चीज को अपने लिए बचने का काम भगवान ने हमें सौंप दिया कि तुम करते रहो, हम धन्य हो गए। इस उसमें एक भय रहता है, मालिक का भय है। यदि भय सेवक जो पुराना होता सुनिए रहता है, पर तब भी एक मर्यादा है। एक भगवान के सामने एक सम्मान का भाव है, नीचे बैठना है, चरणों में रहना है, हुक्म बजाना है, तो सावधानी है, बेनियम नहीं करना है। सख में बेनियमी आ जाती है, थोड़ा सा वो जोखिम की चीज है, और मधुर में अत्यंत बेनियमी है, इसलिए बहुत जोखिम की चीज है। वास्तव में बेनियमी तो है, पर बेनियमी होते हुए भी उसमें डर है कहीं बीमार न हो जाए, उसका डर है। इसलिए वात्सल्य भी बेजोखिम का है, सख में कुछ जोखिम है और मधुर में बहुत जोखिम है। इसलिए राग का मार्ग उत्तम, विराग की अपेक्षा राग मार्ग उत्तम सहज। पर विराग मार्ग के राग मार्ग में सर्वोत्तम चीज है मधुर, पर उसके अधिकारी नहीं। इसलिए सर्व सुलभ, सबके लिए सरल और अवश्य अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाली रति, वो दास रति है, वो सेवक रति है, वो दास के भाव है, और ये रागा अनुगा भक्ति है। भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, वो हमारे मालिक, हम उनके दास। इस भाव से राग मार्ग का ग्रहण करने से बहुत बेजोखिम भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। हरिओम सबको।